नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमरीका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में एक जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जलमार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। तूफान बावी पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया, लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से मुकाबला। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुक क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुक क्वोक द्वीप के पास रट नगुआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के कल रात पूर्वी चीन के तटीय शहर ताइझोउ में आने की खबर है। इस बीच लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
इससे पहले तूफान बावी जापान के दक्षिण साकिशिमा द्वीप से टकराया और उत्तरी ताइवान के पास से गुजरा। हालांकि यह अब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ तेज वर्षा का खतरा बना हुआ है। सरकारी मीडिया के अनुसार झेजियांग प्रांत से 17 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फुजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से अधिक तथा शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण पश्चिम मानसून के और सक्रिय होने के कारण फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। ताइवान के अग्निशमन विभाग के अनुसार 113 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग तेज हवाओं के दौरान मोटरसाइकिल या साइकिल से गिरने, फिसलने या किसी वस्तु की चपेट में आने से घायल हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
वेनेजुएला में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 4,300 से अधिक हो गई है। 24 जून को ला गुआइरा में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। ये एक सदी से अधिक समय में वेनेजुएला के सबसे भीषण भूकंप माने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सप्ताह 13 लाख लोगों की मदद के लिए 29,60,00,000 अमरीकी डॉलर की राहत जुटाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को ला गुआइरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लापता बच्चों की माओ से भी मुलाकात की। उधर दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। ये आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जी जागृति, खेल खबरों में सबसे पहले चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। तो फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हानियू और क्रिस्टिनिया म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और जागृति, अगर बात करें क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो जागृति, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। तूफान बावी पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया। लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।